महाबंध पुस्तक पहली लेक्चर नंबर 18। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं, भूतबले प्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकं, महाधवलविख्यातं महाबन्धं नमाम्यहम्। आचार्य श्री भूतबली भट्टारक प्रणीत यह महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जो षटखंडागम का छठवां नंबर का खंड है। इसमें सर्वप्रथम हम प्रकृति बंध अधिकार देख रहे हैं और महाबंध पुस्तक एक के 76 नंबर के पृष्ठ पर आ गए, 76। ये हमारी काल प्ररूपणा चल रही है। प्रकृति बंध में काल का अर्थ होता है पर्टिकुलर, जो प्रकृति लगातार कितने काल तक बनती रहती है, तो उसमें हम मार्गणाओं में भी देख चुके हैं। लेशा मार्गणा में हमने शुक्ल लेशा की भी बात देखी थी, अब सम्यक तो मार्गणा की बात अपनी चलेगी। 76 नंबर का पृष्ठ जो है शायिक सम्यक्त्व में, अब एक शायिक सम्यक्त्व के गुणस्थान कौन से हैं? 4 से 14 पर है लेना। तो शायिक सम्यक्त्व में अभिनिबोधिक ज्ञान के समान भंग है, परंतु अभिनिबोधिक ज्ञान तो 12वें तक था, हाँ, तो ये 14वें तक लेना। हाँ, तो साता में डिफरेंस पड़ेगा, साता का कुछ कम पूर्व कोटि ले लेंगे हम। विशेष ध्रुव प्रकृतियों का जघन्य बंध का अंतर्मूर्त तथा, देखो, एक ध्रुव प्रकृतियों का जघन्य बंध का अंतर्मूर्त बताया है और श्रेणी चढ़ के फिर दोबारा चढ़ा ज्ञानावरणादि जो है अंतर्मूर्त तक बंध हुआ और उत्कृष्ट साधिक 33 सागर है। अभिनिबोधिक ज्ञान इतना ही अगर हम कहते तो साधिक 266 सागर तक हमने देखा था ना, यहाँ साधिक 33 सागर। क्षायिक सम्यक्त्व का काल यानी पहला भव, फिर देव का एक 33 सागर का, फिर आकर पूर्व कोटि में आए। मनुष्य गति 5 का, मनुष्य गति पंचक बताएंगे आप लक्ष्मी जी, मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी वज्रषभ सनन, हाँ, औदारिक शरीर अंगों का, ये मनुष्य गति 5 पंचक। तो मनुष्य गति पंचक का जघन्य बंध काल 84,000 वर्ष, क्योंकि हमने देखा था नरक में शायिक समय दृष्टि की मिनिमम आयु 84,000 वर्ष की होगी और उत्कृष्ट 33 सागर है जो सर्वार सिद्धि की उत्कृष्ट आयु है। साता वेदनीय 2 आयु और देवगति का ओह के समान है, यानी साता वेदनीय में एक समय से लेकर कुछ कम करोड़ पूर्व, क्योंकि 13वें गुणस्थान इसमें इंक्लूड है, इसलिए 2 आयु तो अंतर्मूर्त तो होती है। देवगति 4 का ओह के समान है, यानी उपक्षायिक सम्यक्त्व के साथ वहां भोगभूमि में जाने वाला लेना है। साधिक 3 पल्ले ले लेंगे, यानी वंथन पूर्व कोटि में से सम्यक्त्व का काल और फिर क्षायिक होने का काल माइनस कर देंगे हम। हाँ, देवगति गत्यानुपूरी वैकृत शरीर अंगों का, बरोबर। तीर्थंकर प्रकृति का कितना होगा? अब वेदक सम्यक्त्व की बात है। वेदक सम्यक्त्व में पहले वेदक सम्यक्त्व का मिनिमम काल कितना है प्रेरणा बिन, और मैक्सिमम वेदक सम्यक्त्व बराबर है। हाँ दो नहीं लेना क्योंकि बीच में सम्यक मिथ्यात्व में आता है एक छासर सागर। तो वेदक सम्यक्त्व में वो भी छासर सागर वो कृतकृत्य के सहित वाला होता है तब पूरा छासर सागर हो जाता है। हाँ यानी वेदक सम्यक्त्व में ध्रुव प्रकृतियों का जघन्य बंध काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट छासर सागर है। विशेष वेदक सम्यक्त्व की उत्कृष्ट स्थिति छासर सागर प्रमाण है, इससे ध्रुव प्रकृतियों का बंध काल भी उतना ही कहा है। मनुष्य गति पंचक का ये वेदक सम्यक्त्व में मनुष्य गति पंचक ले रहे, जघन्य बंध काल अंतर्मूर्त वह हमने 84,000 वर्ष लिया था, ये वेदक सम्यक्त्व का काल ही अंतर्मूर्त रहता है इसलिए उसको वेदक सम्यक्त्व में मनुष्य गति का बंध लिया, और वो भी कौन करेंगे देवनार के। हाँ अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट 33 सागर। देवगति 4 का जघन्य अंतर्मूर्त क्योंकि अंतर्मूर्त तक वेदक सम्यक्त्व रहा मनुष्य 3 इंचों में। उत्कृष्ट कुछ कम 3 पल्ले हैं, हमने देखा कि वो पूरा 3 पल्ले तो क्षायिक के साथ जाने वाले को होगा, वेदक सम्यक्त्व तो वहां जाने के बाद उसने प्राप्त किया क्योंकि वेदक सम्यक्त्व तो सहित कोई वहां भूभूमि में नहीं जाएगा ये उसका अर्थ होता है। ख्याल में आती ना लक्ष्मी? हाँ जाने के बाद, क्योंकि यहाँ भी किसी ने वैदिक सम्यक्त्व तो प्राप्त किया है और अगर वो क्षायिक नहीं होता है हाँ तो वहाँ भोगभूमि में सम्यक्त्व लेकर नहीं जा सकता ये कहना चाहते। इसलिए कुछ कम 3 पल्ले कहा। शेष प्रकृतियों का अवधि ज्ञान के समान बंध काल है, अभी ध्रुव हो गया मनुष्य गति हो गई देवगति हुए तो एक समय से अंतर्मूर्त हो क्या है अन्य कौन सी रहेगी? हाँ यानी साता साता ज्ञानावरण तो ध्रुव में आए ना ऊपर अंतर्मूर्त और छासर सागर ले लिया था। मनुष्य गति देवगति का अलग से बात बताया, शेष में अभी आयु की बात होती है तो अंतर्मूर्त होती है आयु अंतर्मूर्त होती है और जो प्रतिपक्ष वाले हैं 4 से 7 ही गुण स्थान है वो साता वगैरह भी सब एक समय से अंतर्मूर्त हो गए। शेष में आयु को अंतर्मूर्त लेना और बाकी को एक समय से अंतर्मूर्त लेना। उपशम सम्यक्त्व में अभी उपशम सम्यक्त्व का काल अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं होगा है ना। 5 ज्ञानावरण स्त्यान वृद्धि त्रिक के बिना 6 दर्शनावरण क्योंकि सम्य दृष्टि के तो बंधेगी ही नहीं है। 12 कषाय पुरुष वेद भय जुगुप्सा मनुष्य गति 5 पंचेंद्रिय जाति तेजस कारमान शरीर समचतुर संस्थान वर्ण 4 अगुरु लघु 4 प्रशस्त विहाय गति त्रसादि 4 सुभग सुस्वर आदेय निर्माण तीर्थंकर और उच्च गोत्र एवं 5 अंतरायों का जघन्य और उत्कृष्ट बंधकाल अंतर्मूर्त प्रमाण है। शेष प्रकृतियों का जघन्य एक समय उत्कृष्ट अंतर्मूर्त है प्रतिपक्ष वाली आयु का तो बंध है ही नहीं है उपशम सम्यक्त्व में। श्रेणी में उतरते समय परंतु वो जो अगर मरेगा तो भी उपशम सम्यक तो चलता रहेगा उसका देव में, एक समय कैसे होगा नैना पन उपश फिर से आप बताओ। हाँ देवगति के लिए जो है उसमें एक समय तो हो ही जाता है ना, शेष प्रकृतियों के लिए ना एक समय से अंतर्मूर्त। श्रेणी से उतरते समय जो प्रकृतियां बनती है उसकी बात करें ना जो मनुष्यों में ही बंधेगी देव में नहीं बंधेगी, इसी बात लेनी है। क्योंकि जैसे तीर्थंकर प्रकृति वहां भी उपशम सम्यक तो है, इसलिए उसको ऐसा नहीं ले सकते। उपशम सम्यक तो बना रहेगा अंतर्मूर्त तक। हाँ, यानी केवल हाँ वैक्रिक चतुष्क के लिए करना पड़ेगा, पर वो शेष में आ गया इसलिए वहां ऊपर मनुष्य गति वाला लिया। क्योंकि देवनार की जो उपशम समय प्राप्त करेंगे उनका तो एक समय भी बात नहीं होगी, मनुष्य में ही उपशम समय के साथ देवगति का एक समय कैसे हुआ? वो तो आठवें में आए और मरण हो गया, उपशम समय तो चालू हो गया परंतु अभी मनुष्य गति बांधने लगे इस तरह से। विशेषार्थ देखते देखो पेज नंबर 77, असंयत सम्यक्त्वी अथवा देश संयमी की अपेक्षा। उपशम सम्यक्त्व का जघन्य और उत्कृष्ट बंध काल अंतर्मुत, एक एक गुणस्थान की अपेक्षा बता रहे। एज इट इज औपशमिक सम्यक्त्व तो प्राप्त हुआ तो अंतर्मुत तो रहेगा ही रहेगा, परंतु द्वितीय उपशम की अपेक्षा एक एक गुणस्थान का काल मरण की अपेक्षा एक समय बन सकता है। जैसे उतरते समय या चढ़ते समय आठवें का पहला भाग छोड़ो, नौवे में गए एक समय में मरा, दसवें में गए एक समय में मरा, ग्यारहवें में एक समय में मरा, या उतरते समय एक एक समय में मरा, तो उस गुणस्थान में उपशमिक सम्यक्त्व का काल एक समय हो सकता है। इसलिए कहते प्रमत्त संयत से लेकर उपशांत कषाय वीतराग छद्मस्थ पर्यंत, यानी ग्यारहवें गुणस्थान तक एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त प्रमाण है। क्योंकि मरकर वो चौथे गुणस्थान वाला होता है, उपशम सम्यक तो चालू रहता है पर वो गुणस्थान नहीं रहता। सासादन सम्यक्त्व में पांच ज्ञानावरण, ये सम्यक्त्व मार्गणा चल रही ना, अभी एक जीव की अपेक्षा एक समय से छह अवली है, तो पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण। देखो क्योंकि सासादन है तो यहाँ तो स्थान वृद्धि बंधेगी, 16 कषाय भय जुगुप्सा, यहाँ तो केवल ध्रुव बंधे में मिथ्या तो नहीं लेना है और वो जो पहले गुणस्थान वाली जो बंध विच्छित वो यहाँ नहीं लेनी है, उसमें से जो ध्रुव बंधी उसको नहीं लेना। पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, 16 कषाय भय जुगुप्सा, तीन गति क्योंकि नरक गति यहाँ नहीं बंधेगी, पंचेंद्रिय जाति अन्य जातियां बंधेगी नहीं, चार शरीर, समचतुर्थ संस्थान, दो अंगोपांग, वैकरिक और औदारी दोनों संभव है ना, इसलिए वर्णादि चार, तीन अनुपूर्वी नरकानुपूर्वी को छोड़कर, अगुरु लघु चार, ये कौन से चार है प्रेरणाबेन? हाँ क्योंकि नए सुनने वाले हैं ना बहुत, तो ये हमको तो मालूम है अगुरु लघु चार कौन है। अगुरु लघु, उपघात, परघात और उच्छ्वास, प्रशस्त विहार गति, त्रस चार, एक्चुअली अप्रशस्त को उसमें प्रतिपक्ष में क्यों नहीं लिया, ठीक है एक समय ले ही लिया उन्होंने, त्रस चार, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्च गोत्र, नीच और उच्च गोत्र तथा पांच अंतरायों का जघन्य बंध काल एक समय और उत्कृष्ट छह अवली प्रमाण है। नीच गोत्र का एक समय
क्या?
अरे सासादन ही एक समय का है। इस अपेक्षा से एक समय लेना और उत्कृष्ट छह अवली प्रमाण है, यानी वो मार्गणा का काल हमको कंसीडर करना है ना इस तरह। अप्रशस्त विहार गति को क्यों छोड़ा? नहीं नहीं क्यों छोड़ा, क्यों प्रशस्त विहार गति ऊपर भी पसत्त विहार गति तस चार, क्योंकि यश ऐश वगैरह शेष में आ गए, जघन्य एक समय उत्कृष्ट अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त यानी छावली, उसको भी अंतर्मूर्त कह ही सकते वैसे भी हम, परंतु यथायोग्य वो कम भी हो सकता है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, अन्य संस्थान, अन्य भी यहाँ नहीं लिए हैं, नहीं नहीं नहीं, देखो यहाँ एक समय जो घटित कर रहे हैं ना, यानी पहले समय में शायद यही बंधेगा ऐसा लगता है, एक समय जब घटित करना है तब की बात है। मैंने पहले ऐसा लगता है मुझे, शेष में भी एक समय होगा अपन वो प्रतिपक्ष की, पर ये तो मनुष्य गति के साथ भी बन सकता है, नीच गति नहीं, इसलिए यहाँ तो बंधेगी क्योंकि बंधे विक्षित हुई नहीं है। हाँ, अन्य चार संस्थानों की भी नहीं हुई है, फिर भी नहीं नहीं, क्यों नहीं लिया उसको सोचो, चाहिए वाली बात छोड़ दो, क्यों नहीं लिया उसका कारण ढूंढो। मैंने उत्कृष्ट छह अवली प्रमाण जो बताया है, अंतर्मूर्त शेष में भी अंतर्मूर्त है, पर यहाँ छह छह अवली प्रमाण उन्होंने इसका बंधकाल बताया है। एक मिनट, ज्ञान समझ अत्र संस्थान अनुपूर्वी तीन गति, जैसे हम अलग अलग अपेक्षाओं, अगर भोग भूमिका जो सासाधन में आता है तो छो छो उली इसी को बांधेगा, समय चतुर संस्थान देवगति। हाँ, इस तरह से सोचना, अगर सातवें नरक वाला सासाधन में आता है वो तीर इंच गति बांधेगा छ उली तक, इस तरह से कुछ सोचना चाहिए इसमें। अब ग्रेवेक वाला, सॉरी ग्रेवेक वाला सासाधन में आता है तो छो छ अवली तक वो तो मनुष्य गति, इस तरह से इसको ऐसा कुछ सोचना है, इसलिए मैं कहती हूँ कि हाँ, इन्हें तब वो नीच गोत्र भी उत्कृष्ट छ अवली की बात घटित हो सकती है। यानी ये मेरे एक पॉसिबिलिटी बता रही हूँ, भूभूमि वाला देवगति बांधेगा, ग्रहवेग वाला मनुष्य गति ही बांधेगा, सातवें नरक वाला तीर्यंच गति ही बांधेगा, यानी पूरे छह अवली तक उसका हो सकता है, इसलिए ये मुझे एक विकल्प आया। अभी उन्होंने क्या लिखा है उसको पढ़ते देखो, बाकी पांच ज्ञान और नौ दर्शन वो तो जो ध्रुव बंदी वो तो बंधेगी बंधेगी, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। ये पंचेंद्रीय जाति भी तभी, पंचेंद्रीय जाति ऐसी भी दूसरे गुण स्थान में तो उनके लिए, हाँ, क्योंकि अन्य चार जाति के बंध विच्छित हो चुकी है। हाँ, अब ये विशेषा देखते, कोई उपशम सम्यक भी, उपशम सम्यक्त्व का एक समय शेष रहने पर सासाधन गुणस्थान को प्राप्त हुआ, उसकी अपेक्षा सासाधन का जघन्यकाल एक समय प्रमाण है। कोई उपशम सम्यक्त्व भी, उपशम सम्यक्त्व का छह अवली प्रमाण काल शेष रहने पर सासाधन में आ गया, वहां छावली प्रमाण काल व्यतीत कर मिथ्यात्व में पहुंचा। इस प्रकार जगन्य बंध काल एक समय उत्कृष्ट छावली कहा है। तीन आयु का उग के समान काल है, विशेष यहां नरकायु का बंधन नहीं होता। तो जो एक समय के बदले एक 10-15 समय में मर जाए मान लेते हैं, तो उसका अंतर्मूर्त कैसे होगा? वो सासादन में मिथ्यात्व में गया है तो सासादन का काल उसका आयु का आयु बंध का काल नहीं कहलाएगा? ये जरा विकल्प आया मुझे। ऊपर क्या लिखा है? तिन्नी आयु ओघम। ओघ यानी सासादन वाला ओघ लेना कि जनरल ओघ लेना? जैसे नरक का ओघ अलग होता है ना, और फिर उसमें भेद करते हैं, परंतु सासादन के लिए ओघ नहीं शब्द आएगा। इन्हें ओघ के समान लिया है ना, अंतर्मूर्त बताया है। सासादन में आयु का बंध है कि नहीं पहले नक्की करो। कौन सा है? हाँ, देवायु भी है, तिर्यंच आयु भी, मनुष्य आयु भी है, और यहाँ ओके समान अंतर्मूर्त बता रहे
हैं।
अंतर्मूर्त तो आवली से ऊपर सारे अंतर्मूर्त है, तो वहां उसने आयु बंध शुरू किया, भले उसका आयु बंध चलता रहा मिथ्यात्व में, उससे कोई रुकावट नहीं है। यानी इसमें अंतर्मूर्त आवली से थोड़ा ज्यादा उसका हो सकता है, ये विकल्प यही ही ले सकते हैं ना, और क्या ले सकते हैं उसको? आगे देखते हैं। शेष प्रकृतियों का जघन्य एक समय उत्कृष्ट अंतर्मूर्त है, यानी शेष में वो प्रतिपक्षी वाले ऊपर जो मैं मुझे ऐसा लगता है ना, हमने जो अपेक्षा देखी ना भूगभूमि के लिए, ग्रहवेग के लिए, सात्विक के नरक के लिए, यानी वहां वो लगातार उसी का बंध हो सकता है उसमें वो पर, और एक समय तो सासादन का एक समय वाला लेना, और अगर छह अवली रहते तो छह अवली इसका बंध होगा, ये उसका कर। यानी जो ध्रुव बंदी के साथ इनको भी लिया, क्योंकि वो विशिष्ट गति के लिए वो ध्रुव बंदी है। देखो शेष प्रकृतियों का हो गया एक समय से अंतर्मूर्त। सम्यक मिथ्या दृष्टि में साता असाता चार नौ कषाय स्थिरादि तीन युगल का, चार नौ कषाय ने अभी दो युगल लिए ना, हाँ ये प्रतिपक्ष वाली लिए, बाकी ध्रुव बंदी को छोड़ा और पहले दूसरे में जो बंध विच्छित हुई उसको भी छोड़ा। स्थिरादि तीन युगल का जघन्य एक समय, तीन युगल यानी स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ और यश अयश है ना, उत्कृष्ट अंतर्मूर्त बंध काल है, यानी उनके लिए तो इतने ही वो सारे प्रतिपक्ष वाले हैं। शेष प्रकृतियों का जघन्य तथा उत्कृष्ट बंध काल अंतर्मूर्त प्रमाण है। अब मनुष्य गति के लिए क्या कहेंगे लक्ष्मी जी? जिसको पूछा जाए वही बोले। हाँ मनुष्य गति के लिए क्या कहेंगे या देव गति के लिए क्या कहेंगे? हाँ बनते पर तो एक समय होगा कि नहीं होगा? मरण नहीं है, परंतु जो बांध रहा है ना, देखो अभी देव और नार के, उनके लिए मनुष्य गति का ही बंध होगा। जो सम्यक यानी चौथे गुणस्थान वाला जो है वही तीसरे गुणस्थान में बनता है, क्योंकि पहले दूसरे में तो बंध विच्छित हो गई उनकी, बाकी के तिर्यंच गति के, तो उनके लिए मनुष्य गति ध्रुव बंधी है, उनके लिए देव नारकी के लिए, और मनुष्यों के लिए देव है वो तो ध्रुव बंधी है, इसलिए उनके लिए पूरे अंतर्मूर्त काल तक वही बंधेगी। अन्यत्र जो ओग की अपेक्षा देखते हैं तो हम उसको एक समय वाली बात देखते हैं, एक समय से लेकर अंतर्मूर्त तक। कहीं कहीं जो प्रकृतियां जो हम जैसे साता साता वेदने के साथ उनको नहीं लिया है, उसको प्रतिपक्ष में नहीं लिया, क्योंकि जो बांध रहा है उसके लिए वो ध्रुवबंदी है। ख्याल में आते हैं बस, मिथ्या दृष्टि की बात है तो उसके लिए तो कोई भी गति एक समय के लिए बंधी और दूसरी गति बंधना शुरू हुई हो सकता है, पर तीसरा गुणस्थान जिस किसी गति का है और वो वहां जो गति बंद रही है समय दृष्टि की, वही उसको भी बंधेगी, तो उसके लिए वो ध्रुवबंदी कहलाएगी। इसलिए जघन्य भी अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त, क्योंकि तीसरे गुणस्थान का काल ही जघन्य भी अंतर्मूर्त। अंतर्मूर्त में थोड़ा वेरिएशन होगा परंतु उसको अंतर्मूर्त ही कहेंगे। आपको याद है तीसरे का जघन्य किसके होता है, उत्कृष्ट बंध उत्कृष्ट अंतर्मूर्त किसके होता है, हमने पहले पढ़ा था, जरा उसमें सबको सुनने दो ना।
जो मिथ्यात्व से सम्यक मिथ्यात्व में जाकर वापस मिथ्यात्व आएगा उसका उत्कृष्ट काल।
हाँ देखो, उत्कृष्ट ने पहले से तीसरे में गया और फिर वापस मिथ्यात्व, या चौथे से तीसरे में आकर फिर चौथे में गया, क्योंकि संकलेश से आया है फिर विशुद्धि करके उसको चढ़ना है, उसका अंतर्मूर्त बड़ा होगा। जो पहले से तीसरे में आकर चौथे में चला गया है उसका अंतर्मूर्त छोटा होगा, क्योंकि विशुद्धि से चढ़ा है और विशुद्धि से ऊपर भी गया, पर है तो अंतर्मूर्त ही। देखो विश्व चार से एक, हाँ होता है ना लघुकार, हाँ सबका लघुकार समान बताया था, यानी चौथे गुणस्थान का लघुकार, तीसरे का लघुकार, पहले का लघुकार, यानी चौथे से पहले में आया वापस चौथे में गया, इस तरह से हमने देखे थे सब लघुकार सब समान है करके। विशेषार्थ, कोई मिथ्यात्वी विशुद्ध परिणाम युक्त हो मिश्र गुणस्थान में सर्व लघु अंतर्मूर्त रहकर, ये लिखा है देखो, चतुर्थ गुणस्थान में चला गया, अथवा कोई वेदक सम्यक्त्वी संकलेशवश मिश्र गुणस्थानी हुआ, वहां सर्व लघु अंतर्मूर्त काल व्यतीत कर पुनः संकलेशवश मिथ्यात्वी हुआ। इसी प्रकार देखो, चढ़ने में तो केवल चौथे में भेजा और उतरते समय वेदक सम्यक भी कहा, तो कहां से आ सकता है, चौथे से, पांचवे से, छठे से भी आ सकता है, है ना। इसी प्रकार कोई मिथ्यात्वी विशुद्ध परिणाम युक्त हो उत्कृष्ट अंतर्मूर्त प्रमाण मिश्र गुणस्थानी रहा, बाद में अथवा कोई वेदक सम्यक भी संकलेशवश मिश्र गुणस्थान में उत्कृष्ट अंतर्मूर्त काल व्यतीत करके पुनः अविरत सम्यक्ति हो गया। देखो, बाद में तीसरे में से जाते समय तो चौथे में ही जाएगा, पर तीसरे में से आते समय चौथे में से आया या पांचवे या छठे में से आया था। इनके अपेक्षा मिश्र गुणस्थान का जघन्य उत्कृष्ट बंध काल अंतर्मूर्त का है, जघन्य से उत्कृष्ट थोड़ा ज्यादा होगा। अब संगी मार्गणा देख रहे हैं, ध्रुव प्रकृतियों का जघन्य बंध काल क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण है, क्योंकि संगे ने संगी पंचेन्द्रिय जीव है, उनमें छोटे में छोटी आयु है क्षुद्र भव वाली, संगी अपर्याप्तों की। उत्कृष्ट शत पृथक्त्व सागर, यानी संगी में रहने का उत्कृष्ट काल, जो हम मैक्सिमम हमारी भाषा में 900 सागर जितना कहते हैं ना, शत पृथक्त्व सागर, शत यानी 100, पृथक्त्व यानी कुछ 100 सागर, उसमें मैक्सिमम तो हमने 900 सागर, क्योंकि नहीं तो 1000 सागर कह देते ना, 1000 से कम है। शेष प्रकृतियों का पंचेन्द्रिय पर्याप्त के समान भंग है, उसमें बोलो
श्रेणी से नीचे उतर कर वापस उत्तर ऊपर जाएगा वो अंतर्मूर्त से छोटा होगा।
बिल्कुल, तभी तो यहाँ कहा ना, नहीं तो अंतर्मूर्त कह देते, जब श्रेणी से उतर कर फिर श्रेणी चढ़ता है तो अंतर्मूर्त हो जाता है। हाँ, कदली घात वाला शुद्र भाव, अपर्याप्त में भी बंधनीय आयु और जीवनीय आयु, ऐसे दो भेद होते हैं, याद है कि छोटे। देखो देखो, अपर्याप्ति की जो रेंज है यानी किसी ने अपर्याप्त संबंधी आयु बांधी लब्धि अपर्याप्त की, तो जो कभी मिनिमम अंतर्मूर्त और मैक्सिमम अंतर्मूर्त, बहुत सारे स्थिति के भेद हो गए आयु के भी, अब उसने मिनिमम तो नहीं बांधी पर मिनिमम से थोड़ी ज्यादा बांधी है, और बाद में उसका भी कदली घात हुआ लब्धि अपर्याप्त का, और वो मिनिमम जो बांधी हुई थी उससे भी कम हुई, उसी को क्षुद्र भव कहते हैं। इसलिए जो बंधी हुई मिनिमम आयु उसको बंधनीय कहते, बंधनीय आयु, और उसने भोगी कितनी उसको कहेंगे जीवनीय आयु। तो जो जीवनीय मिनिमम आयु है उसको कहेंगे क्षुद्र भव। सर्वत्र इतनी सूक्ष्म अपेक्षा नहीं लगाते, वो तो केवल कह देते कि क्षुद्र भव इस तरह से। और ऐसा क्षुद्र भव ये जो मिनिमम आयु है वो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सब में पॉसिबल है। देखो हम क्या देख रहे थे, संगी में, क्योंकि संगी का एक क्षुद्र भाव है तो उसने वो ध्रुवबंदी प्रकृतियों का बंध किया, उत्कृष्ट वो ध्रुवबंदी की अपेक्षा उत्कृष्ट लगातार इतने काल तक संगी रहा तो उसने उसका बंध किया। शेष प्रकृतियों का पंचेंद्रिय पर्याप्त के समान भंग है। शेष प्रकृति हमने अलग अलग जो देखी है तो पंचेंद्रिय पर्याप्त का जो लगातार काल है उसमें हम उसको ले सकते हैं। जैसे मिथ्यात्व वाली बात है, मिथ्यात्व का क्या कहेंगे हम, मिथ्यात्व के सहित जो ध्रुवबंदी है, मिथ्यात्व 16 कषाय है भाईजी गुप्सा, तो उसका बताएंगे आप, उसमें जरा बताना उसका मिनिमम काल बताना। क्षुद्र हो गया, हाँ सौ सागर, हाँ सौ सागर जो वो मार्गणा का काल है ना। विशेष यह है कि साता वेदनीय में अवधि ज्ञान के समान भंग जानना। देखो ऐसा क्यों कहा, अरिहंत भगवान है संगी मार्गणा की अपेक्षा, वो ना संगी है ना असंगी है। जब हम जीव समास में देखते हैं तो वो संगी पंचेंद्रिय जीव है, पर जब संगी मार्गणा जो है, संगी यानी वो मन से जानने वाले जीव, वो उसको संगी कहेंगे। तो संगी मार्गणा में या तो असंगी जीव है पहले से असंगी पंचेंद्रिय तक, यानी एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक, और संगी कहाँ से है, एक पहले गुणस्थान से बारहवें गुणस्थान तक, तेरहवें चौदहवें वाले को कहेंगे वो संगी भी नहीं और असंगी भी नहीं। इसलिए जो ओग में हमने देखा या पंचेंद्रिय इन जनरल कहेंगे, पंचेंद्रिय कहने से वो जीव समास कहलाता है। मार्गणा में जब हम पंचेंद्रिय जीव कहेंगे, वो इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा पंचेंद्रिय जीव कहा था हमने, इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा जिसको पंचेंद्रिय कहते हैं वो चौदह गुणस्थान तक सब इंक्लूड है। फिर से देखना कौन से मार्गणा से हम भेद कर रहे हैं। जब पंचेंद्रियों में बात की थी तो हमने साता वेदनीय का उत्कृष्ट बंधकाल कुछ कम करोड़ पूर्व देखा था। अब यहां मार्गणा हमारी संगी की है। आप कहेंगे संगी को या संगी पंचेंद्रिय क्या डिफरेंस है, संगी ये संगी मार्गणा है और पंचेंद्रिय कहना वो इंद्रिय मार्गणा का भेद है। वो इंद्रिय मार्गणा में हम बिल्कुल चौदहवें गुणस्थान तक सारे पंचेंद्रिय जीव कहेंगे, ख्याल में है ना। ये वेद में भी ऐसा ही हुआ था, वेद मार्गणा में स्त्री वेदी कहां तक होते तो नौवें गुणस्थान तक, और मनुष्यनी कहां तक होती है तो चौदहवें गुणस्थान तक। ये जो धवला का जो चल रहा था ना मराठी ट्रांसलेशन, वो तो रेवती नाम की एक है वो महिला वो विदुषी है, उसका फोन आया था। यहाँ दो जगह ऐसा अलग अलग है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ घोटाला है, कुछ कौन सी बात सही है कौन सी नहीं, दोनों सही है। मार्गणा की अपेक्षा उसके गुणस्थान होते हैं अंतर्मूर्त, एक समय से अंतर्मूर्त, क्योंकि वो प्रतिपक्षी कहलाएगा। नहीं नहीं कुछ कम प्रॉपर्टी यहाँ नहीं होगा, अवधि ज्ञान के समान भंग है लिखा ना। हाँ अरे मैंने अंतर्मूर्त लिखा है, लास्ट टाइम ही लिखा है वो, हमने शायद उसके ओक से क्या डिफरेंस है वो बताए हो। देखो 71 पेज पर देखो ना, अभिनिधि विज्ञानी की बात है ना वहां पर। सेवेंटी वन पेज अवधि ज्ञानी की बात है ना। मतिशुता अवधि ज्ञानी की बात चल रही थी, साता साता वेदनी वो सब इकट्ठा लिया ना एक समय से अंतर्मूल। पहली लाइन में लास्ट में है देखो साता, जिस मार्गणा में तेरवे गुणस्थान नहीं है उसमें वो कुछ कम पूर्वकोटि नहीं बन सकता। आगे देखते हैं। हाँ, पंचेंद्रिय का 1000 सागर, उसमें अपर्याप्तों को भी लेते हैं हम। और यहां तो हमारी मार्गणा कौन सी है, संगी की। ये संगीपने का काल जो है वो काल की अपेक्षा उसको उसके समान है, इतना ही बताना है। यानी उनका भी काल और इनका भी काल समान है। देखो हो गया। असंगी में, असंगी कहने से एकेंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक सब आ गए, और गुणस्थान पहला ही होगा, है ना। पांच ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, मिथ्यात्व, 16 कषाय, भय जुगुप्सा, तेजस कारमान शरीर, वर्णादि 4, अगुरु लघु उपघात रह गया, यहाँ लिखो। लक्ष्मी जी के इसमें है क्या? हाँ, ऊपर भी क्या है, सेकंड लाइन प्राकृत में। हाँ, अगुरुल के बाद निमिनम के पहले ऊपर लिखना, ऊपर लिखना और बिंदी करना इसी गोल। उपघात, निर्माण तथा 5 अंतरायों का, ये सब ध्रुवबंदी है ना मिथ्यात्व गुणस्थान वाली। जघन्य बंधकाल क्षुद्र भव ग्रहण, असंगियों में भी क्षुद्र भव लेना जिसे संगी में लिया था। उत्कृष्ट अनंत काल, असंख्यात पुद्गल परावर्तन है, यानी असंगीपने का काल एक इंद्रिय में इतना होता है तो सब में असंगी मिलकर भी उतना ही कहेंगे हम, असंख्यात पुद्गल परावर्तन। अब 4 आयु, 4 आयु का तो अंतर्मूर्त होगा मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। तिर्यंच गति त्रिक प्रेरणा बिन आपको बताना है, ओगवत है। असंगियों में तिर्यंच गति का लगातार बंद, तिर्यंच गति गत्यानुपुर और नीच गोत्र। हाँ, कितना होगा असंख्यात लोग, बहुत अच्छा, असंख्यात लोग है ना। और मिनिमम एक समय होगा क्योंकि वो तो प्रतिपक्ष के रूप में होती है। औदारिक शरीर का बंधकाल, औदारिक शरीर भी प्रतिपक्षी रूप होगी तो एक समय होगा। असंगी पंचेंद्रिय के लिए वो एक प्रतिपक्षी है, बाकी सब वो औदारिक शरीर का ही बंध कर रहे हैं चतुरिंद्रिय तक, तो उनके लिए वो असंख्यात पुद्गल परावर्तन जो उसकी जिसको काय स्थिति कहते हैं, किसी मार्गणा में रहने का लगातार काल है उसको काय स्थिति या ऐसा नाम है उसमें, वो मार्गणा का काल। शेष प्रकृतियों का जघन्य बंध काल एक समय, शेष में वो जो जो उनके लिए प्रतिपक्षी है वो सब ले लेना। उत्कृष्ट अंतर्मूर्त प्रमाण है। अब ये देवगति नरक गति वैकृत वो सब असंगी पंचेंद्रियों के लिए वो तो प्रतिपक्षी है ही है, उनके लिए वो एक समय से अंतर्मूर्त हो जाता है। आहारकों में, अब आहारक के गुणस्थान पहले से 13 है। 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, मिथ्यात्व, 16 कषाय, भय जुगुप्सा। परंतु मुझे बताओ लक्ष्मी जी, आहारक का काल, आहारक मार्गणा का काल आपको बताना है। आहारक पने रहने का उत्कृष्ट और मिनिमम काल, हाँ, रुजुगति से जाता रहेगा तो कितना होगा? हाँ, आपको याद है अंगुल का संख्या, तो जिसमें असंख्याता संख्या तो उत्सर्पिणी अवसर्पिणी होती है ना। और आहारक पने रहने का जघन्य काल कितना होगा? क्षुद्र भव में 3 समय कम करो, क्योंकि 3 मोड़ से जाने वाला सूक्ष्म जीव लेना वहां पर। हाँ देखो, अभी पढ़ने से पहले ये थोड़ा हम मार्गणा का काल निश्चित करेंगे तो ध्रुवबंदी का काल हमको निश्चित होगा, है ना। तो फिर पढ़ते देखो, 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, मिथ्यात्व, 16 कषाय, भय जुगुप्सा। तीर्यंच गति, औदारिक तेजस कारमान शरीर, वर्ण चार, तीर्यंच गति प्राज्ञान पूर्वी, अगुरु लघु उपघात निर्माण, नीच गोत्र, पांच अंतरायों का बंद काल, जघन्य एक समय है, मिथ्यात्व का तीन समय कम क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण है, और इनका उत्कृष्ट काल अंगुल का असंख्यात्व भाग जो असंख्यात उत्सर्पिणी उत्सर्पिणी प्रमाण है। क्या 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 तीन समय कम क्षुद्र होना चाहिए। एक मिनट हाँ बराबर है, श्रेणी से उतरा और विग्रह गति से गया, श्रेणी से उतर कर विग्रह गति से गया। इन्हें मरकर अनाहारक हुआ विग्रह गति में। इसलिए मिथ्यात्व का कितना कहा, तीन समय कम क्षुद्र भव। सोलह कषायों के लिए कैसे करेंगे? साधन में लाना उसको, यानी जहाँ नहीं बनता वहां से यानी अनंत अनुबंधी के भी ला सकते हैं, और प्रत्याख्यान के ऊपर के गुणस्थान में से डायरेक्ट वहाँ साधन में आ गए तो वहां बंद किया और फिर अनाहारक हुआ। पर वैसा मिथ्यात्व में नहीं हो सकता, मिथ्यात्व में आया और एक समय में मरकर अनाहारक हुआ ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मिथ्यात्व में जाके अंतर्मुत रहकर ही वो दूसरे भव में चला जाएगा, ये उसका कारण। यानी कुछ तो श्रेणी उतर कर है और कुछ तो सांसाधन में है, यानी सांसाधन में मरकर वो अनाहारक हुआ। बाकी भय जुगुप्सा वगैरह जहां जिसकी बंध विच्छित है ना, वहां उसको लाना, बंद कराना और फिर अनाहरक करना। हाँ ये तीर्यंच गति को क्यों यहां लिया प्रेरणा बहन? ये लगातार कितना लिया, अंगुल का असंख्यात्व भाग लिया। तीर्यंच गति का बंध अंगुल का असंख्यात भाग काल तक लगातार किया, क्यों? किस कौन कौन तीर्यंच तीर्यंच होगा तो उसको उदय कह रहे आप, हम बंध की बात पूछ रहे। अरे अग्नि का एक वायु का एक, उसका काल असंख्यात लोक है, वो कितना है अंगुल, और अंगुल का असंख्यात भाग इतना है, उसमें जितने प्रदेश है बहुत कम काल है। असंख्यात लोक प्रमाण काल तक वहां रह सकते हैं। हाँ
क्या लाख योजन में से वो जो जीव रहते हैं ना वही रुजु गति से जा सकते हैं?
क्या क्या क्या
रुजु गति से एक लाख योजन में से ही जा सकते हैं?
एक लाख योजन
मैंने ऐसे लिखा है, मेरे को मालूम नहीं पड़ा ये क्यों है,
कहा लिखा है?
मैंने पेंसिल से लिखा है।
क्या लिखा है बोल?
रुजु गति से एक लाख योजन में से ही जा सकते हैं।
एक लाख योजन में से आप एक राजू कहेंगे तो अलग बात है, मगर हाँ नहीं नहीं मैं कहा है, नीचे कुछ है क्या? हमने कुछ नहीं लिखा है क्योंकि एक लाख योजन का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ उसके किसी एक पर्टिकुलर के लिए होगा। एक मिनट है, कहाँ लिखा है? हाँ तीर्थंकर की बात है, वो हमने अभी पढ़ी नहीं, अभी पढ़ते हैं। हाँ तीर्थंकर प्रकृति का जघन्य एक समय और उत्कृष्ट 33 सागर है, इसके लिए आप पूछ रहे थे।
हाँ
यानी तीर्थंकर प्रकृति का कैसे होगा एक समय? अभी उसने उपशम श्रेणी से उतरा, एक समय के लिए बांधा और अनारक हो गया। अनारक होगा तो रुजु गति से, सॉरी एक मोड़ लेके गया ना, नहीं नहीं बिना, अगर रुजु गति जाएगा तो आहार का आहारक ही रहेगा ना। तो एक समय के लिए आहारक रहा, बाद में अनाहारक हुआ। एक समय एक मोड़ से गया होना चाहिए, रुजु गति से नहीं। उत्कृष्ट 33 सागर तो ठीक है ना वहाँ। हाँ तो केवल 33 सागर क्यों लिया फिर? हाँ साधिक, साधिक साधिक में लेना है। हाँ तो यहाँ भले वो आहार ही रहा ना, उसने श्रेणी भी नहीं चढ़ा वो, यानी वो लगातार बांधता ही रहा, जब से बांधा है तब तक, और फिर रुजुगति से आगे और रुजुगति से वापस। इसमें आपने 1 लाख योजन की बात की, क्या लिखा है जम्बूदी आपने, क्या लिखा
है?
साधिक के लिए रुजुगति से गया। हाँ जम्बूद्वीप इसलिए 33 सागर वाला कहाँ जाएगा? सरवार सिद्धि कितनी बड़ी है? देखो रुजु गति से आने वाला वही आएगा ना। अभी वो जम्बूद्वीप के जो कोई विधेय क्षेत्र जहाँ कुछ लेना है जन्म वहां लेकर।
हाँ
नहीं एक समय कम तक है, एक समय कम है वहां पर। उन्होंने बोला बाकी जो 4 विमान है ना आजू बाजू उसकी उत्कृष्ट आयु कितनी है? 33 सागर में एक समय कम है ना वहां पर। हाँ तो जाने वाला और आने वाला ऐसा ही रुजुगति से गया ना इसलिए उसकी चर्चा निकली होगी। हाँ शेष प्रकृतियों का उगवत जानना, उगवत यानी वो तो बाकी सब प्रतिपक्षी वगैरह जो होगी ना एक समय से अंतर्मूल तक होगा। अनाहारकों में कार्मण कायोग के समान जानना चाहिए क्योंकि अनाहारक है और बंध चाहिए। अनाहारक 14 वाले पर यहाँ कोई बंध ही नहीं है तो यहाँ तो 1 से 3 समय ले सकते हैं। हाँ कर्मण कायोग के समान, कर्मण कायोग हमने देखा था ना, निकालो देखो योग मार्गना निकालो। कर्मण कायोग में 66 पेज तीसरी लाइन मिला क्या? कर्मण कायोग में देवगति 4। अब ये सम्यक दृष्टि जो है और देवगति बांध रहा है ना, ये तो मनुष्य में आया हुआ, तीर्थंकर के लिए तो मनुष्य ही लेना है। जघन्य एक समय क्योंकि एक मोड़ से आया है, उत्कृष्ट 2 समय क्योंकि दो मोड़ से उसको ज्यादा नहीं लगेगा, पंचेन्द्रिय से पंचेन्द्रिय में आया हुआ है। शेष सर्व प्रकृतियों का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट तीन समय, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव भी जो जिसको बांधते हैं इसी बात की, क्योंकि यहां नरक गति को कारमान का युग में किसी को बंधेगी नहीं, तो सूक्ष्म जीव मनुष्य गति तिरंज गति बाकी और भी सब बांध सकते हैं, तो उसका एक समय से तीन समय तक हो जाएगा। क्या क्या आहार, हाँ आहारक द्विक तो बंद, कारमान का युग में जो नहीं बंधने वाली जो प्रकृति है ना, वहाँ गुणस्थान है, पहला है, दूसरा है और चौथा है। वैसे तो केवली का भी है, तो वो भी अंतर्मुर से अनियंत्र तीन समय से ज्यादा नहीं है। हाँ अब हम एक लाइन पढ़ने रहेंगे 78 पेज। इस प्रकार एक जीव की अपेक्षा बंध काल का वर्णन समाप्त हुआ। ये हमने प्रकृति बंध में काल का अनुयोग देखा, एक जीव की अपेक्षा काल। अब अंतरानुगम में कैसे सोचना है, एक जीव की अपेक्षा अंतर। अभी हमें इसके लिए गुणस्थानों का भी अंतर चाहिए, मार्गणाओं का अंतर मालूम होना चाहिए। पहले ओघ में बताएंगे, ओघ में कौन से गुणस्थान में कौन सी प्रकृतियां बनती है, उसकी बंध विच्छित्ति कब होती है, बंध विच्छित्ति के बाद फिर दोबारा बंध कब होगा, जब नीचे आएगा। यानी जो पहले गुणस्थान में जिसकी बंध विच्छित्ति होती है उसका अंतर कैसे कहेंगे, पहले गुणस्थान का अंतर। तो सम्यक्त्व में अंतर्मूत रहा और फिर वापस आया, या 266 सागर रहकर फिर वापस आया, कुछ कम। इस तरह से उसका हमको अंतर निकाल सकते हैं। तो अंतर में थोड़ा अलग टाइप से सोचना पड़ेगा। अभी पढ़ेंगे हम 79 पेज पर, स्लोली जाएंगे। आप भी पूछना कहीं बीच में कुछ बात है तो। देखो अंतरानुगम में यहां एक जीव की अपेक्षा ओग और आदेश से दो प्रकार का निर्देश करते हैं। निर्देश ने कथन दो प्रकार सा होगा, ओग ने इन जनरल बात होती है और आदेश ने अलग अलग मार्गणों में बात होती है। विशेषार्थ छखंडागम सूत्र के खुद्दाबंध नामक दूसरे खंड में, एक शुद्रक बंध कहो खुद्दाबंध कहो, ये धवला पुस्तक सातवी। पहले खंड पर छह पुस्तकें हैं टीका के, ये धवला पुस्तक सातवी है। ये मूल क्षुद्रक बंध है वो दूसरा खंड है, परंतु उसकी टीका जो है, धवला तो टीका का नाम है, तो ये हमने सातवी पुस्तक में सब जो पढ़ा था वो उसको खुद्दा बंध या क्षुद्रक बंध कहते हैं। और उसके अगेंस्ट ये महाबंध है, यह बहुत विस्तार से चर्चा है। तो क्षुद्र खुद्दाबंध नामक दूसरे खंड में निम्नलिखित एकादश यानी 11 अनुयोग द्वार कहे हैं। जीवस्थान जीवठान कहते हैं ना, उसमें से एक पुस्तक तो चूलिका की है। जैसे हम कहते ना वो तो पहले में पहले गुणस्थान कौन से हैं उनके सब बातें बताई, उसमें दूसरे पुस्तक में आपको याद होगा सभी मार्गणाओं का कथन है, उसके भेदों का कथन है, आलाप जो है, जो जीवकांड में हमने सारे जो टेबल्स देखे ना वैसा है वहां पर। यानी हमने वहां देखा था, देखो एक एक आलाप लेकर एक एक भेद देकर, तो उसमें कौन सा गुणस्थान कौन सा जीव समास कौन से पर्याप्ति प्राण सब 20-20 लगाए थे, क्या भूल गए? याद है। यानी वो 11 अनुयोग द्वार कौन से बताए, देखो एक जीवेन सामित्तम यानी एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व, एक जीवेन कालो एक जीव की अपेक्षा काल। अब यहाँ प्रकृति समुत्कीर्तन नाम का एक बताया और बंध स्वामित्व विषय भी बताया है, स्वामित्व में तो स्वामित्व आ ही गया। काल एक जीवेन अंतरम यानी एक जीव की अपेक्षा अंतर, नाना जीवे ही भंग विचो, नाना जीव ने अनेक जीवों की अपेक्षा उसके भंग यानी वो बांधने वाले एक है कि अनेक है वैसे वैसे भंग होते हैं। द्रव्य परुवणानुगमो द्रव्य परुवण उसकी संख्या होती है, खेतानुगमो बंधक यानी वो बांधने वाले जीव कितने हैं उसको उसको द्रव्य कहेंगे, खेतानुगमो यानी क्षेत्र कितने क्षेत्र में रहते हैं वो बांधने वाले। कोसनानुगम स्पर्शन यानी अति तनागत काल की अपेक्षा और वो मारणांतिक वगैरह जो समुद्रात की अपेक्षा सब उसमें आ जाती बात, विहार की अपेक्षा, अन्य समुद्रात की अपेक्षा, फिर ये सब अनेक जीवों की अपेक्षा बात होती है सब। नाना जीवे ही कालो, देखो एक जीव की अपेक्षा काल देख रहे तो मिथ्यात्व का काल, एक जीव की अपेक्षा अंतर्मूर्त है और नाना जीवों की अपेक्षा सदा काल, यानी वो गुणस्थान में जीव नहीं हो ऐसा कभी नहीं होगा। ये कौन से ऐसे उसको निरंतर मार्गणा कहेंगे, कौन कौन से गुणस्थान जो निरंतर होते हैं, पहला चौथा पांचवा छठा सातवा और तेरहवा, वो नाना जीव की अपेक्षा हुए। फिर नाना जीवों की अपेक्षा अंतर, यानी जो निरंतर नहीं है जो सांतर है, जैसे दूसरा गुणस्थान है तीसरा गुणस्थान है, वो क्या है सूक्ष्म सांप्राय जो है अलग अलग मार्गों की अपेक्षा हम देखते हैं उसको, तो उसका अंतर कितना होगा मिनिमम और मैक्सिमम, अनेक जीवों की अपेक्षा ये बात है उसको अंतर कहते हैं। भागा भागानुगमो यानी कितने भाग प्रमाण है पूरे बंधकों से वो विशिष्ट, हाँ उसकी संख्या। और अप्पा बहुगानुगमो अल्पभूतव यानी मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक उसमें अल्पभूतव लगाएंगे, यानी कम से कम वाले बंधक कौन है उससे अधिक बंधक कौन है, इस तरह से। ये पृष्ठ 25 के ऊपर से उन्होंने बात बताई यहाँ पर। एक आंकड़ा कहाँ लिखा है, एक कहाँ है फुटनेट का, एक एक कहाँ नीचे है समाधान में, कहाँ पर है, एक कहाँ लिखा है, चलो मिलेगा तो देखेंगे नीचे, यानी वो एक आंकड़ा मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। अभी आगे पढ़ते, एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व, जो हमने प्राकृत में पढ़ा ना वो अभी हिंदी में, एक जीव की अपेक्षा काल, एक जीव की अपेक्षा अंतर, नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय, द्रव्य प्रमाणानुगम क्षेत्रानुगम स्पर्शनानुगम, नाना जीवों की अपेक्षा काल, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर, भागा भागानुगम और अल्पभूतव। कहीं कहीं प्रमाणानुगम भी बताते, प्रमाण कितना है उसकी भी चर्चा आती है कहीं कहीं पर, यानी यहाँ 21 बताए, कहीं कहीं 24 की भी चर्चा आती है ना। महाबंध के पयड़ी बंधाहार में वे प्रकृति बंधाधिकार जो पहली पुस्तक है पूरी, उक्त अनुयोग द्वारों के सिवाय यानी इन एडिशन संन्यास परूपना, संन्यकर्ष का अर्थ क्या होता है, जहाँ एक प्रकृति बन रही है वहां कौन कौन सी अन्य प्रकृतियां नियम से बंधेगी, और फिर कोई से बंध भी सकती है नहीं भी बन सकती। प्रकृति बंध में यह है, स्थिति बंध में अलग बात होगी। स्थिति बंध में क्या कहेंगे हम सन्निकर्ष में, एक की उत्कृष्ट स्थिति है तो दूसरे की कैसी होगी, उत्कृष्ट पहले में पहले बंधेगी कि नहीं बंधेगी, बंधेगी तो क्या उत्कृष्ट हो सकती कि अनुत्कृष्ट, अगर अनुत्कृष्ट होती कितनी कम बनती, इस तरह से स्थिति में अनुभाग में वगैरह बात है। यहाँ तो प्रकृति के साथ सन्निकर्षण है, एक से साथ अन्य कौन कौन सी नियम से बनती बात। हाँ वो आएंगे तो पढ़ेंगे, फिर वो राजवार्तिक के लिए एक अकड़ा लिखा है। तो कहते कि यहाँ संन्यास प्ररूपणा तथा भावानुगम का भी निरूपण किया है। भावानुगम में तो कौन सा भाव है, तो बंधक होंगे तो औदयिक भाव है, ऐसा आता है। शंका, काल प्ररूपणा के पश्चात अंतर प्ररूपणा का कथन क्यों किया गया है। समाधान, काल परूपणाए बिना अंतर परूपणावत्ति दो, काल की प्ररूपणा के बिना अंतर प्ररूपणा की उपपत्ति नहीं बैठती। यहाँ क्या कहते, काल के पश्चात अंतर क्यों लिया, पहले भी बताता है ना, तो पहले काल पता हो तो उसके बाद अंतर की भी बात घटित हो जाती है। इस काल प्ररूपणा के पश्चात अंतर प्ररूपणा ही कहा जाना चाहिए, कारण एक जीव से संबंध रखने वाला अन्य अनुयोग द्वार नहीं। एक जीव की अपेक्षा क्या है होता है, एक तो स्वामित्व, एक काल और एक अंतर, बाकी जो क्षेत्र स्पर्शन सब नाना जीवों की अपेक्षा बात होती है। एक जीव की अपेक्षा तीन ही है, इसलिए पहले क्यों लिया काल को, बाद में अंतर को क्यों किया? तो कहते काल को जाने बिना अंतर को बराबर नहीं जान सकते। फिर अभी अंतर को ही किए क्यों, क्या अन्य क्यों किए, कि अन्य कोई अनुयोग द्वार ही नहीं रहा। इसलिए वीरसेन स्वामी ने कहा है वहां क्षुद्र बंध में, पुनो अंतरमेवं वत्तव्यम एक जीव संबंधिनो अन्नस्य अनुयोग द्वारस्य अभावः। उसी का हिंदी उन्होंने अभी अभी बता दिया था। अंतर शब्द के अनेक अर्थ है, उनमें से यहाँ छिद्र, मध्य अथवा विरह रूप अर्थ लेना चाहिए। आचार्य अकलंक देव ने वो राजवार्तिक में लिखा है, अंतर शब्द से अनेकार्थ वृत्ते है छिद्र मध्य विरहेशु अन्यतम ग्रहणम। उसी के बाद वो नीचे क्या क्या लिखा है उन्होंने विस्तार से वहां लिखे है। यानी अन्य अन्य क्या क्या हो सकता है उन्होंने बहुत विस्तार से, यानी छिद्र के अर्थ में भी अंतर शब्द का अर्थ होता है, मध्य के लिए विरह के लिए भी, इस तरह से। अब हम आगे बढ़ते हैं, वो नीचे का छोड़ देते हैं, केवल खुदा बंद में अंतर किसको लिखा है वो नीचे से दूसरी लाइन फुटनोट की 79 पेज पर नीचे से दूसरी लाइन, अंतरम उच्छेदो, उच्छेद कहेंगे, विरहो यानी उस गुणस्थान का विरह कहो, उच्छेद कहो, परिणामम अंतर्गमनम परिणाम अन्य परिणाम में गमन होना, नथित्थ गमनम अन्न भावो व्यवहारणम इति एयठो, यानी अन्य भाव रूप परिणाम ना और वापस उसमें आना, इस तरह से। एदस्य अंतरस्य अनुगमो अंतरानुगमो, अंतरानुगम में वो अंतर की प्ररूपणा यहाँ की जाएगी। अंतर में हमने वो गुणस्थान है या जो बंध है वो दोबारा करना है, एक बार किया फिर वो बंध नहीं हो रहा था और वापस होने लगा, तो ये वापस आने में मिनिमम अंतर कितना और मैक्सिमम अंतर कितना, ये हमको देखना है। अब यहाँ ओग से बात बताएंगे, यानी यहाँ हमारा विषय यहाँ से शुरू होता है अंतर प्ररूपना। बीच में उन्होंने केवल अंतर क्या है वगैरह वगैरह उसकी चर्चा की। ओग से पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, साता असाता वेदनीय, चार संज्वलन, पुरुष वेद, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, पंचेंद्रिय जाति, तेजस कारमान, ये शरीर के नाम है, समचतुरस संस्थान, वर्ण चतुष्क, अगुरु लघु चतुष्क, प्रशस्त विहाय गति, त्रस चार, स्थिरादि दो युगल, सुभग सुस्वर आदेय निर्माण तीर्थंकर, और पांच अंतराय के बंध का अंतर कितने काल पर्यंत होता है, जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से अंतर्मूर्त। देखो ये कैसे होगा, अंतर है ना, ज्ञानावरण बांध रहा था, कब तक बांधता है, दसवें तक, ग्यारहवें में गया, एक समय के लिए नहीं बांधा और मरकर देव हुआ तो वहां बंध चालू हो गया, तो अंतर एक समय का हुआ। अगर नहीं मरा तो क्या होगा, ग्यारहवें का पूरा अंतर्मूर्त प्राप्त करके वो नीचे आएगा, दसवें में फिर बंध हुआ, तो ये अंतर कितना हुआ, अंतर्मूर्त वाला ग्यारहवें का काल। अभी जो जहां से बंध विच्छित होती है उपशम श्रेणी में और फिर वापस आता है, तो उसकी अपेक्षा उतने उसके बंध काल हो गए, जैसे संज्वलन का है, संज्वलन की अभी लोभ की बंध विच्छित हुई कहां पर, नौवे में, फिर उसके दसवां ग्यारहवां फिर दसवां, ये मिलकर अंतर्मूर्त काल होगा। ऐसे जहाँ जिसकी बंधव इच्छित्ति होती है तो श्रेणी चढ़कर वापस वहाँ नीचे आया तो उसका बंध शुरू हुआ, तो उसका अंतर्मूर्त का उसका गैप पड़ गया। और ऊपर चढ़कर एक समय में मरकर देव में चला गया, वहाँ बंध चालू होता है ध्रुव बंदी का, इसलिए वह एक समय घटित भी होता है। देखो विशेषता क्या है, देखो विशेष यह है कि निद्रा और प्रचला का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। देखो आठवें के पहले भाग में मरण नहीं है, परंतु पहले भाग में बंध विच्छित्ति के बाद एक समय में भी मरण नहीं घटित किया, ये तो ये महाधवला की विशेषता, ये हम पहली बार हमने इसमें पढ़ा। फिर से क्या, पहले भाग में उसके बंध विच्छित्ति होती है, तो बंध विच्छित्ति के बाद एक समय में अगर मरता है, जैसे हमने ग्यारहवें में मरण देखा, वैसे यहाँ एक समय में मरता है तो कहते नहीं, बंध विच्छित्ति के अंतर्मूर्त के बाद ही उसका मरण हो सकता है। ये महाधौला में सर्वत्र ये बात ली है उन्होंने, निद्रा प्रचला के लिए, निद्रा प्रचला के बंध विच्छित्ति के एक अंतर्मूर्त के बाद मरण होगा। आगे कुछ अलग भी कोई प्रश्न चिन्ह बताया मैंने, एक मिनट परंतु उसके अगेंस्ट पेज नंबर 281 निकालो, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। स्त्रीवेद में एक समय है क्योंकि स्त्रीवेद मैंने अबंधक का एक समय लिया, स्त्रीवेद में अबंधक एक समय लिया, बंधक नहीं अबंधक, वो नाना जीवन की अपेक्षा के हमको मालूम नहीं वो कौन सा है। ये नाना जीवन की बात है, नाना जीवन की अपेक्षा, हम अभी एक जीव की अपेक्षा बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है ना, उसके बंध विच्छित्ति करके एक समय के लिए कोई
नहीं कर पाती है,
स्त्रीवेद के नहीं, स्त्रीवेद मार्गणा है, वहाँ नाना जीवन की अपेक्षा बात है, यानी स्त्रीवेद से ही चढ़ने वालों में जिसने निद्रा प्रचला की बंध विच्छित्ति कर दी है ऐसा जीव लेना, उसका अबंधक है बस इतना ही लेना। कोई बात नहीं, जब उसकी चर्चा आएगी तो वहां से पढ़ेंगे हम, यानी हमें यह लेना की निद्रा प्रचला की बंध विच्छित्ति होते ही एक समय में मरण नहीं है, अंतर्मूर्त में मरण है। 80 पेज पर देख रहे थे हम, और बाकी सबके लिए एक समय की बात घटित हो रही है। स्त्यान वृद्धि त्रिक, देखो अभी हमारी अंतर की प्ररूपणा चल रही है, एक समय के लिए वो नहीं बांधा और फिर बांधने लगे, उसको एक समय का अंतर कहेंगे। और मैक्सिमम अंतर उपशम श्रेणी में जो बंध विच्छित्ति के बाद फिर नीचे आने के लिए जितने समय तक ऊपर उसको अंतर कहेंगे, मैक्सिमम अंतर। स्थान वृद्धि त्रिक मिथ्यात्व अनंतानुबंधी चार का अंतर जघन्य से अंतर्मूर्त, यानी वो ऊपर के गुणस्थानों मेरा अंतर्मूर्त तक, उत्कृष्ट कुछ कम 266 सागर। देखो अगर पहले वाला तीसरे में भी जाता है ना तो भी अंतर्मूर्त होगा, या चौथे में जाकर वापस मिथ्यात्व में तो भी अंतर्मूर्त होगा, या 266 सागर कैसे पहले 66 सागर के अंत में तीसरे में आया फिर समय दृष्टि हुआ, फिर दूसरे 66 सागर में अंतर्मूर्त बाकी है तब मिथ्यात्व में आया, इसलिए कुछ कम कहा। हाँ पूरा लेते तो उसको कृतकृत्य के साथ क्षायिक में जाना पड़ेगा, फिर उसको दोबारा बंध नहीं होगा, दोबारा बंध कराना है इसलिए उसको मिथ्यात्व में लाना। विशेषार्थ, कोई एक तिर्यंच या मनुष्य 14 सागर स्थिति वाले लांतो कापिष्ठ देवों में उत्पन्न हुआ, वहां एक सागरोपम काल बिताकर द्वितीय सागरोपम के आरंभ में सम्यक्तों को प्राप्त हुआ तथा 13 सागर काल सम्यक्तों सहित व्यतीत कर मरा और मनुष्य हुआ, वहां संयम अथवा संयमाशयम का पालन कर इस मनुष्य भव संबंधी आयु से कम 22 सागर वाले आरण अच्युत कल्प में उत्पन्न हुआ। ये फॉर एग्जाम्पल उन्होंने घटित किया है, इन्हें 13 सागर फिर 22 सागर, वहां से मरकर पुनः मनुष्य हुआ, संयम को पालन कर उपरिम ग्रेवेक में उत्पन्न हुआ और मनुष्य आयु से न्यून 31 सागर की आयु प्राप्त की, यानी यहाँ न्यून करके उसी में सागरों में घटित किया, और कहीं कहीं हम उसके बीच में एक पूर्व कोटि बढ़ाते हैं। वहां अंतर्मूर्त कम 66 सागर काल के चरम समय में मिश्र गुण स्थान वाला हुआ, यानी अंतर्मूर्त बाकी था तब तीसरे गुण स्थान में आया, अंतर्मूर्त विश्राम कर पुनः सम्यक भी हुआ, विश्राम ले चयकर मनुष्य हुआ, संयम या संयमाशयम को पालन कर इस मनुष्य भव की आयु से न्यून 20 सागर की आयु वाले आनत प्राणत देवों में उत्पन्न होकर पुनः यथाक्रम से मनुष्यायु से कम 22 तथा 24 सागर के देवों में उत्पन्न होकर अंतर्मूर्त कम 266 सागर काल के अंतिम समय में, एक्चुअली अंतिम समय में नहीं है, अंतर्मूर्त पहले लेना चाहिए, मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, क्योंकि विशेषार्थ है ना इसलिए वो अंतर्मूर्त पहले ही लाएगा। हाँ इस प्रकार अंतर्मूर्त कम 266 सागर अर्थात 132 सागर काल प्रमाण अंतर हुआ, यह क्रम अव्युत्पन्न लोगों को समझाने को कहा है, यानी फॉर एग्जाम्पल जिसको कुछ माहे कैसे हो सकता है ये समझाने के लिए बताया, परमार्थ दृष्टि से किसी भी तरह 66 सागर का काल पूर्ण किया जा सकता है, ये लिखा है ना, कहीं कहीं ऐसा जो आता है ना 2000 सागर का काल कैसा होगा कैसे, लोग उसी को पकड़ के बैठते, देखो यहाँ लिखा है ना देव के इतने भो इतना रख के इतने भो, अरे अपन ने वो फॉर एग्जाम्पल बताए, इतने होने की जरूरत नहीं, हमने देखा ना 2000 सागर में एक भी नरक का भव न हो ये हो सकता है, 2000 सागर में एक भी देव का न हो ये हो सकता है, एक भी मनुष्य का न हो ये हो सकता है, पर तिर्यंचों के तो हो गए हो गए, वो हमने तिर्यंच आयु बंध के अंतर में वगैरह देखा था, वो बात आएगी अभी आगे चल के। देखो एक पैराग्राफ यहां से पढ़ते, प्रत्याख्यानावरण तथा अप्रत्याख्यानावरण रूप 8 कषाय का जघन्य बंध अंतर अंतर्मूर्त। देखो प्रत्याख्यानावरण का अंतर कब होगा, जब संयमी होगा तब, नहीं बंधने वाला ऊपर, संयम में रहने का मिनिमम काल अंतर्मूर्त और मैक्सिमम काल कुछ कम करोड़ पूर्व तथा अप्रत्याख्यानावरण रूप 8 कषाय का जघन्य बंधांतर अंतर्मूर्त, यानी अप्रत्याख्यान का बंधन न हो तो पांचवें में या संयम में रखना, उत्कृष्ट कुछ कम एक पूर्व कोटि। विशेषांक, कोई जीव मोहिनी के 28 प्रकृतियों की सत्ता युक्त एक कोटि पूर्व प्रमाण आयु वाला मनुष्य उत्पन्न हुआ, गर्भ से 8 वर्ष पूर्ण होने पर वेदक सम्यक भी हो उसने सकल संयम को प्राप्त किया, एक कोटि पूर्व के अंत में उसने मिथ्यात्वी होकर मरण किया। मिथ्यात्वी होने की क्या जरूरत है, ये तो ओग में है। अरे देव में भेजने है तो होता है ना, वहां जाके चौथा गुणस्थान होगा तो वो बंधना चालू किया। मिथ्यात्वी होकर मरण करने में अंतर्मूर्त कम हो जाएगा उसका, अंत में मरकर देह हुआ ऐसा ले सकते हैं। क्योंकि हम मिथ्यात्व का नहीं करना है हमको, ये तो प्रत्याख्यानावरण का करना है। इस प्रकार सकल संयम की अपेक्षा देशों ने एक कोटि पूर्वकाल कषायष्टक का अंतर कहलाया। परंतु अगर हम अप्रत्याख्यान का लेना है तो वो सम्मूर्छन तीर्यंच में उसको पांचवें गुण स्थान में भेजना, उसका लंबा काल होगा, यानी अंतर्मूर्त कम पूर्व कोटि होगा सम्मूर्छन तीर्यंच में। हाँ देखो सम्मूर्छन तीर्यंच में हाँ अंतर्मूर्त कम पूर्व कोटि, वो पांचों में मरकर देह हुआ। देव में जाते अप्रत्याख्यान का बंद चालू किया। यही रुकते अभी हम। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। अश्विन भाई।